अब देखिए, किसी चीज को पाने की तमन्ना बड़ी शदीद होती है, वाकई अंधा बहरा होता है। छोटे बच्चे तो करते ही हैं, जब जिद करते हैं आप देखिए रोने लगते हैं, आप ना माने तो मचलने लगते हैं, जमीन पर अपने आप को ऐसे रो लेंगे, चाहे एक कैंडी के लिए वो रो रहे हैं। और बाज दफा माँ बाप उनके सारे लाड देखते हैं, इतना उनको कर देते हैं कि वो तेरी मिन्नतें कर करके तुझे खुद ही बिगाड़ दिया, ये कैफियत आती है। वो फिर उनको नौ सुननी आई नहीं, शुरू से जो तरबियत के अंदाज थे उसमें नफ्स के घोड़े को दबाया जाता था, आज बचपन क्या अभी पैदा होने से पहले ही उसका नफ्स खोल के रख दिया जाता है। तो बड़ी ज़रूरत है दुआ मांगने की। अल्लाह के नबी ने कितनी दुआएं सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्र नफ्सी, अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से बचती हूँ, तेरी पनाह में आती हूँ। एक दुआ में आता है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतायन, अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक आंख के पलक झपकने के बराबर ना करना। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है, दो बातों का खौफ है मुझे अपनी उम्मत से, यदि मुझे अपने दुनिया से जाने के बाद ये नहीं फिक्र कि मेरी उम्मत करेगी क्या और खाएगी क्या और पिएगी क्या, फरमाए दो बड़े गम है मुझे अपनी उम्मत के। नंबर एक, ख्वाहिश नफ्स, ये नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे पड़ जाएंगे, और ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि ये हक बात कहने से रोक देती है। यकीन करें कि आज कितनी ज़ुबानों से हक क्यों अदा नहीं हो पा रहा कि किस मुंह से बताएं, खुद भी तो ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए हैं, कैसे जोश आ सकता है, कैसे होश आ सकता है। फिर कहते हैं चुपके ही बैठे रहो। और दूसरी चीज़ जिसका खौफ था अल्लाह के नबी को, वो लंबी उम्मीदें थी। आपने फरमाया लंबी उम्मीदें आखिरत को भुलवा देती हैं। फिर मौत आए तो बंदा कहते हैं हाय बेवकत मौत आ गई, हाय अभी तो मरना नहीं था। और जो चीज़ें हमारी मर्जी की होती हैं वो कभी बेवक्त नहीं होती। वक्त से पहले डॉक्टर पे गए, लाइन पे आ गई, कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है पहले हो गई। अल्लाह अकबर, अरे ऐ तमने तखजा, अंदाज देखिए कितना प्यारा है, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला सामने हमारे ला रहे हैं, देखा तुमने, गौर किया, देखा ज़रा, तुम्हें इसमें एहसास हो गया कि ये सब कुछ क्या है। अब देखिए कि हम सब सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, मैं खुद को बदल सकती हूँ, आप मुझे नहीं बदल सकते, हाँ मेरी आप मदद कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं ना, ये राहबर होते हैं, राह पे पहुँचाते नहीं हैं, जो रहनुमा होता है ना वो लोगों की रहनुमाई कर देता है, गो देयर, जो हादी होता है वो हिदायत की किताब खोल देता है, उस पे चलना उस पे पहुँचना सरासर हमारा अपना ज़ाती फेल है। चाहें तो पूरा कुरान अब पीछे जो रह गए हैं 12 सपारे वो भी पढ़ लें, चाहे ना पढ़ें, अमल में तब्दीली तब आएगी जब आप खुद को अपने पास बदलने की कोशिश करेंगे। नोट करें मेरे वो कौन से वीक पॉइंट है जहां मैं खुद से हार जाती हूँ, कौन सी मेरी ऐसी कमजोरी है कि जिस वक्त मुझे अल्लाह का हुक्म याद भी होता है फिर भी मैं अमल नहीं कर पाती। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, क्या ये इलाह बनाना नहीं है। अब यह एक सवाल उठता है, और वो क्या कि चले हराम कामों में तो इंसान अपनी मर्जी ना करे क्योंकि अल्लाह की पसंद नहीं है, कोशिश ना करे, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी की हैं, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, क्या उनको पाना भी मना है। मसलन जैसे आप देखिए कि कपड़े पहनना, खाना पीना, अच्छी चीज़ें, जायज़ चीज़ें, क्या फिर इसमें भी ना करें। ये एक छोटा सा सवाल होता है कि क्या नफ्स को बिल्कुल मार के ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है ना, इस्लाम में रहबानियत है और ना शहवत परस्ती है। मैंने पीछे भी शायद आपको एक मिसाल दी थी कि जैसे आप यूं सोचें कि आप एक बग्गी चला रहे हैं ना, उसके आगे दो घोड़े हैं, एक घोड़ा काला और एक है सफ़ेद। काला घोड़ा जो है उसका दिल चाहता है यहीं बैठे रहे, ज़मीन के साथ उसकी मोहब्बत है, सफ़ेद घोड़ा जो है वो उड़ना चाहता है, आप कहाँ जाएंगे, एक नीचे ज़ोर लगा रहा है एक ऊपर लगा रहा है, बीच में रह जाएंगे ना, दोनों बराबर की फोर्स के हैं। आप ये ना करें बल्कि आप सिर्फ काला घोड़ा रखें तो आपको वो घोड़ा ज़मीन के अंदर ले जाएगा, और आप उसको छोड़ दें सिर्फ सफ़ेद घोड़ा बांधे वो क्या होगा, वो आपको उड़ा के ले जाएगा। ये है हमारे साथ नफ्से लवामा और नफ्से अम्मारा लगे हुए, दोनों घोड़ों के साथ ज़िंदगी में रहना है। कुछ लोग जो ख्वाहिशों में पड़ गए, काले घोड़े के ऊपर सवार हुए, हर वक्त ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश, तो मैंने तखा सही लाख हवा, वो तो आपको ले जाएंगे ख्वाहिशों में, हवाएं उड़ाती हैं बंदे को। आप देखिए जैसे ये हवा है ना, विंड जिसको कहते हैं, हवा भी वही है, उड़ता है इंसान ख्वाहिशों में। और अगर आप ज़मीन से बिल्कुल लातअल्लुक़ करें, सारी जिम्मेदारियां ख़त्म, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं, कोई मामलात नहीं, तो आप देखेंगे कि आपके पांव ज़मीन पे नहीं लगेंगे, बैलेंस क्या है, साथ लेके चलो। दीन और दुनिया को साथ लेना क्या है कि इंसान साथ चले। इसी तरह आप इन दो घोड़ों को लें, काले और गोरे को, दुनिया का घोड़ा और एक आखरत का घोड़ा। काले घोड़े को कर लें दुनिया का घोड़ा, तो सफ़ेद घोड़ा आखरत का। आप सिर्फ दुनिया का घोड़ा बांधेंगे तो भी आपकी बग्घी उलट जाएगी, जैसे गाड़ी के चार की बजाय दो पाँव एक तरफ के लगाएं। और आप सिर्फ इसको सफ़ेद घोड़े में रख लें कि आखरत ही आखरत है, काला नहीं, फिर भी दुनिया में नहीं रहेंगे। इसी जगह रह के जन्नत कमानी है। जहाँ चीज़ खोई जाती है ना, वहीं से पाई जाती है। चवन्नी आपके हाथ से गिर के गुम गई, आप वहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। दूर जाके ढूंढेंगे फिर तो चांस ही नहीं होंगे। इसी दुनिया की ज़मीन से आखरत को लेना है। वाज़े किस्म के गोल हों, आखरत की क्या कोशिश है, दुनिया की क्या है, क्या यहाँ चाहिए, क्या वहाँ चाहिए, क्या यहाँ का नहीं चाहिए तो फिर वहाँ का कैसे मिलेगा। कोई चीज़ दुनिया की हासिल करें शौक से करें, खाएं शौक से, कपड़े बनाएं शौक से, जेवर बनाएं शौक से, लेकिन याद रखें कि जब उसको इस्तेमाल करें, जब भी उसको हासिल करें, तो अल्लाह को ना भूले हुए हों, उसकी नाफरमानी का ना हो और उसी में खो के ना रह जाएं। फिर सारे हकूक अपने ही ना पूरे करें, हकूक दूसरों के भी होते हैं। पैसा अगर आपके पास आया तो वो आपकी मलकियत नहीं है। आपके शौहर की माँ का भी उस पर कोई हक है, आपके शौहर के भाई बहनों में भी कई गरीब होंगे, आपके तो अपने ही नहीं पूरे होंगे, आप किसी और को क्या सुलह मारेंगे। बंदे मोमिन को जो चीज़ मिलती है वो उसको शेयर करता है। मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो अपने माल से और नेकी के मौके जमा करता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं माल हो ही ना, खाम खाम में बहक ना जाऊँ, नहीं, उसको अपने नफ्स पे काबू होता है। उसको पता है मेरे पर्स में 500 या 5000 हो, मैंने जो ख़रीदना है वही ख़रीदना है। कोई दुनिया की ताकत मुझे इस तरह नहीं मजबूर कर सकती कि अच्छा 5000 आ गया जो फजूल खर्च करके आ जाए। बंदे को खुद को काबू करना पड़ता है, फिर मुश्किल नहीं होती। फिर आप खेलेंगे बामकसद खेल खेलेंगे, आप प्लेयर के नाम पे, फ़न के नाम पे, आप एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ देखेंगे, बामकसद खेलेंगे। बस लोग सारी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं, फ़ायदा फिर भी नहीं हासिल कर पाते। बस कहते हम इसलिए कमाएंगे, दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। सुना हुआ जुमला? आज से कोई 10-20 साल पहले हर बच्चे से आप पूछें भी आप बड़े होके क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। क्यों? दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तो वो बाद में बड़े होकर इंसानियत का इतलाक सिर्फ अपनी फैमिली से रह जाता है, उसी की नहीं पूरी पड़ती, दूसरों को कहाँ बताएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी नफ्स की ख्वाहिशात से बचा के रखे। मोमिन की ज़िंदगी मॉडरेट होती है, एतदाल होता है, उसकी ज़िंदगी में कहीं भी एक्सट्रीमिज़म नहीं होता। आप एक्सट्रीमिज़म के ऊपर एक बिग क्रॉस लगा दें, वो इस्लाम ही नहीं है। ना दीन आगे बढ़ने से रोकता है, ना पीछे रुकने का हुक्म देता है। असल ये कि साथ लेके चलो, फ़राइज़ भी ना छूटें, अल्लाह को भी राज़ी रखो, बंदों को भी राज़ी रखो। आप इंसानियत के फ़ायदे के काम करते हैं और नमाज़ें छोड़ने लगते हैं। जी हम सोशल वर्क कर रहे थे, हम हॉस्पिटल में बीमारों को देखने गए थे। चलिए ठीक है, एक और भी बुत बनने की कैफियत देखें ना कि नफ्स कैसे बुत बनता है। बहुत सारे फ़राइज़ सिर्फ नफ्स के ऊपर काबू ना पाने की वजह से नहीं हो पाते। मसलन चलिए देख लेते हैं तौहीद। एक रब को मानना मुश्किल क्यों लगता है? सारे छूट जाएंगे तो ख्वाहिश गालिब आ गई, इलाज छूट गया। कितनी नमाजें ख्वाहिश की वजह से नहीं पढ़ी जाती। हर वो नमाज लिखें अपनी जो नींद की वजह से छूट गई, सोते ही रह गए, कितनी फजरें खोखली दिखेंगी हमें। कितनी नमाजें सिर्फ खाने पीने में रह गए, दावत में थे, पार्टी में थे, नहीं पढ़ी नमाज। बाज़ लोग ख्वाहिश नफ्स के गलबे की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, कई माल की मोहब्बत में चूर हैं, ज़कात नहीं दे पाते। आप देख लीजिए क्या है, नफ्स आ गया ना। आपको समझ आया कि कैसे इला बना नफ्स, कि नफ्स ने इबादात से भी रोक दिया, फ़राइज़ से रोक दिया, मामलात से रोक दिया। बाज़ लोग सारी ज़िंदगी कमाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं फिर भी और कमाते हैं और अकेले तन्हा रह जाते हैं। आज क्यों हकूक़ुल इबाद नहीं पूरे हो रहे? ख्वाहिश नफ्स। आज क्यों बूढ़े माँ बाप कोल्ड होम्स में डाल के फिर जॉब ही करने की ज़रूरत है? ख्वाहिश नफ्स। आज क्यों 6-7 दिन के बच्चे को बेबी सेटर के पास छोड़ के जाने पे जॉब पे शौक पड़ा हुआ है? ख्वाहिश नफ्स। क्या फ़र्ज़ नहीं पूरे होते? बच्चे का तो ख़र्चा अल्लाह ने माँ के पेट से निकाल के दिया, उसको तो दूध अल्लाह दे रहा है। उस दूध को रोक के आप उसको बाहर से महंगा दूध लेके पिला रहे हैं तो कहते हैं नहीं, अब काम तो करना ही पड़ेगा। हर तरफ ऐसे लग रहा है कि जैसे सांप का जहर होता है ना, ऐसे ख्वाहिश का जहर अंदर जा चुका है। तो याद रखिए, कोई काम आप करें, दीन का करें कि दुनिया का करें, फ़राइज़ से आपको फरार नहीं है। आप के इतनों को तो पढ़ा लिया, अब नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इतने तो दर्स दिए रमज़ान की फजीलत पे, अब मैं रोज़े ना ही रखूँ तो अच्छा है, और इसीलिए ना रोज़ा रखूँ क्योंकि मैंने पढ़ाना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप घरदारी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी के मामलात को साथ लेकर चलेंगे, फ़ायदा होगा। अल्लाह अकबर। हाँ, आप अच्छे तरीके से करें, अल्लाह से मांगे। देखिए कि जब आप कोई काम अल्लाह का करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला से उसकी तौफीक मांगे, वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। और जो लोग मूड के ताबे होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाते, ये भी याद रखें। बाद सब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरे पे बहुत सारा बोझ है, मैं 1-2 दिन छुट्टियां ले लूं ताकि मैं ज़रा घर के सारे काम कर लूं। करें आप, आधा दिन सोते ही रहेंगे। आपको उसे यही बड़ा प्लेयर होगा कि आज मुझे कहीं जाना ही नहीं है और मुझे कोई काम ही नहीं है। तो जो मूड के ताबे लोग होते हैं ना, मूडी, वो भी नफ्स के पुजारी होते हैं। बस को हर वक्त खाने की फिक्र है, अब मीठा खा लिया, अब नमकीन खाना है, अब ठंडा खा लिया, अब गर्म खाना है, अब पीना है, अब वो करना है, और नतीजा क्या है कि हर वक्त खुद को ही पूछते हैं। एक आखिरी बात करूँगी कि सबसे ज़्यादा हम किसकी खातिर मारदारत करते हैं, वो कौन सा मेहमान है जिसकी सबसे ज़्यादा हम खातिर करते हैं, जिसके लिए बिस्तर बिछाते हैं, जिसके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, जिसके लिए आसाइश वाले सोफ़े ख़रीदते हैं, नरम गद्दे खरीदते हैं, वो कौन सा मेहमान है? सारे बोल दें, अपना नफ्स। हम खुद को बहुत एंटरटेन करते हैं, कभी लोगों की बातें सुना करें, बड़ी अदा से। मुझे तो उस फलां पिलो के बगैर नींद ही नहीं आती, मैं तो वो उस जूते के अलावा पहन ही नहीं सकती, मैं तो फलां की लॉन के सिवा कोई लॉन पहन ही नहीं सकती। क्यों, आपके जिस्म पे सुइयां लगी हुई हैं जो दूसरों के नहीं लगी? नहीं, हमें तो चुभता है, हमें तो ये करता है, हम तो फलां की चिकन के सिवा कोई और चिकन पहनते ही नहीं है, हमें नाम इसलिए नहीं रह रही कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए। लेकिन आप सोचे तो सही, कितना हम सेंसिटिव होते हैं अपने बारे में। सबसे बड़ी चोट हमें तब पड़ती है जब हमारी जात पे हरफ आता है। बच्चा चल रहा है, खेल रहा है, शरारतें कर रहा है, भाई को मार रहा है, उसको मार रहा है, गुस्सा आएगा, जो ही वो बच्चा आपके पाँव पे पाँव रखेगा या आपको कोई जाती तकलीफ होगी ना, जोर से थप्पड़ मारेंगे आप, बर्दाश्त ही नहीं करता इंसान। तो क्या फिर ये खुदाई नहीं है? हम कितना उन लोगों पे गुस्सा करते हैं जो अल्लाह ताला का हक नहीं दे रहे, और जरा कोई हमारा हक ना दे, हम अदालत तक पहुंचने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अल आराफ 179 में भी यही बात कही थी कि वलकद ज़रा नली जहन्नम कसीर मिनल जिन्नी वल इंसी लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल्ला यस्मऊन बिहा उलाइक कल अनाम बल हुम अदल उलाइक हुमुल गाफिलून। गाफिल लफ्ज़ पढ़ के तो मेरा दिल डूब ही जाता है अंदर, ये गाफिल लोग हैं। अल्लाह कहते हैं हमने बहुत सारे जिन और इंसान पैदा ही जहन्नुम के लिए किए हैं, क्योंकि उनके दिल हैं लेकिन उससे सोचते नहीं, आंखें हैं तो देखते नहीं, कान हैं तो वो सुनते ही नहीं। ये खुद अपनी पसंद की शादी क्या है? लव मैरिज का दूसरा नाम क्या है? मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। अल्लाह की चले छोड़ दें, माँ बाप के आगे मुकाबले पे आ जाते हैं हम। अरेंज मैरिज क्यों हमें एक बुत लगता है? हाय, कोई दूसरों की मर्ज़ी की शादी करे। आप फील करेंगे जहाँ भी ख्वाहिश आएगी ना, वहाँ रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, बेहिस हो जाएगा इंसान। और वो लोग जो सारी ज़िंदगी खुद ही खा पी के दुनिया से चले गए, वो ज़िंदगी भी क्या है? पिछली ज़िंदगी कोई सोचे तो सही, कहाँ चली गई अगर कुरान के बग़ैर थी? वो लज्जतें, वो ख्वाहिशें, वो कहाँ चली गई? कोई वापस नहीं लाएगा। अल्लाह ताला इंसानों के माबूत यानी उनके नफ्स के तस्करे के बाद अब इंसानों को अपनी खुदाई की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। अक़ल को झंझोड़ने वाले दलाइल दिए जा रहे हैं कि इधर देखो, उसी इलाह में न खोए रहो, एक और भी इलाह है जिसने तुम्हारे लिए कायनात में क्या कुछ रखा है। फरमाया अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल्ला, क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कैसे फैला देता है साए को। मद्द या मुद्दू लंबा करने को कहते हैं। यहाँ मद्दा का मानी क्या है? घटाना और बढ़ाना। और ज़िल ज़ोए लाम लाम साए को कहते हैं। ज़िल्ले हुमा का लफ्ज़ आपने सुना होगा। अब यहाँ सायों की बात क्यों हो गई एकदम? कि कभी तुम इस साए को तो देखो, कैसे उसने धूप और छाँव की इतनी प्यारी आंख मिचोली रखी हुई है। कभी साए लंबे, कभी साए घटते, कभी कुछ। वलौ शाह अल्लाह जअलहू साकिनन, और अगर वो चाहता तो इसको बना देता ठहरा हुआ। ये साए क्यों हिलते हैं, कभी छोटे कभी बड़े? अल्लाह इसको साकिन नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। और सुम्मा जालना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने बना दिया आफताब को इस पर दलील, सूरज को एक दलील बना के पेश कर दिया। किस बात की? इस बात की दलील बना दिया कि जिस तरह एक सूरज सारी कायनात को रोशनी दिखा सकता है, तो ये सिराजुम मनीरा, ये क्यों नहीं पूरी कायनात के लिए एक रोशनी का मंबा बनता? क्यों तुम इस नबी के पीछे पड़ गए हो? क्यों तुम्हें इसके बारे में शक है? ये अल्लाह ने तुम्हें नबी इसलिए दिया था कि इसकी तालीमात के नतीजे में इस कायनात में रोशनियाँ फैले। तुमने उसको छोड़कर लात मनात उज्जा को ले लिया और उसकी बातों को छोड़कर अपने बड़ों की बातों में आ गए। कहा, ये इतना बड़ा सूरज देखो, तुम्हें तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अल्लाह के आगे कैसे? तुम कबज ना हो इले ना कबदई यसीरा, फिर हम समेटे जाते हैं साय को अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता। साय को, सूरज को, साय और सूरज साथ साथ ही चलता है ना, किस तरह अल्लाह ताला कभी सूरज को थोड़ा रखता है, फिर बड़ा करता है और होते होते वो छोटा होता है। यहाँ तक आप देखें कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की बात की है, एक है साय की और एक है सूरज की। हम भी दोनों पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या फिर नफ्स बड़ा बोत है उसको पूछना चाहिए या अल्लाह की इस कायनात को देखना चाहिए कि कैसे उसने इसमें चीज़ों को रखा है। पहली बात आप देखिए कि साया किस चीज़ की अलामत है। घटना और बढ़ना, क्या ये मौत को याद नहीं दिलाता? हर लम्हे तुम मौत के करीब हो रहे हो। सुबह उठते हैं ना तो एक ताजगी का एहसास होता है, शाम को जब साए ढलते हैं तो मायूसियों का एहसास होता है, दिल पे एक बोझ आने लगता है। इसी तरह इंसानों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर होते हैं। कुछ अभी ज़िंदगी की इब्तदाई घड़ियों में वो ऐसे हैं जैसे इशराक का वक्त है, चाश्त का वक्त है, और जवानी में तो बिल्कुल सूरज निस्फ निहार पे जैसे आता है, ऐसे इंसान की ताकतें बढ़ जाती हैं, उसका कैसे जोबन होता है, हुस्न भी सबसे बढ़ के, ताकत भी सबसे बड़ी, बर्दाश्त सब कुछ बढ़ सकता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 30, 35, 40, 45, 50, 100, क्या बना? मद्दज़िल्ला, तुम्हारी उम्रों के साए भी छोटे होते हुए दिखते हैं। क्यों फिर इंसान उठते बैठते मायूसी की बातें करता है? हाय, ज़िंदगी ज़ाया कर दी। क्या ज़िंदगी एक बर्फ़ की तरह नहीं पिघल रही? हर कल जो था आज कल में नहीं बदल चुका? इंसान को ख्वाहिशों के अंधेरों से निकाला जा रहा है। होश करो, आंखें खोलो, ये ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी ख़त्म, मौज मस्ती नहीं रहेगी बाकी। कल जहाँ थे तुम, आज मौत से एक दिन आगे करीब हो गए। तुम्हारी ज़िंदगी की एक घड़ी और कम हो गई। हर घड़ी की टिक टिक बंदे को ये सुनाती है कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। तुम पिघल रहे हो, तुम्हारा वक्त कम है, ज़िंदगी चली जाएगी। लेकिन इंसान दूसरों से कभी नसीहत नहीं लेता। उसको ऐसे लगता है कि बस मेरे साथ नहीं होना, बाकियों के साथ हो गया। और इस तरह हम सालों को गिरहें लगाते रहते हैं, कभी अपनी सालगिरह मनाते हैं, कभी मौसमों की गिरहें बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर पहले जनवरी में मनाते हैं, फिर मुहर्रम आता है तो उसमें मनाने लगते हैं। कभी आपने सोचा कि जो लोग पार्टियों में जाते हैं, मना रहे होते हैं, उस वक्त उनको ये ख्याल होता है कि हर गुजरते साल का मतलब ये है कि ज़िंदगी से एक और कीमती साल निकल गया। हर गुजरता साल इनको मौत के करीब कर रहा है। हर गुजरता साल, हर गुजरता महीना, लम्हा एक ऐसे वाक्य के करीब कर रहा है जो उनको ज़िंदगी के अख्ताम से मिला देगा। किसी लम्हे हम ख़त्म हो जाएंगे। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्ला फरमाते हैं, साल एक दरख्त की मानिंद है। नोट कीजिए, बस ऐसे लिखा करें, साल इज इक्वल टू दरख्त, महीने उसकी शाखें हैं, दिन उसकी टहनियां हैं, घंटे उसके पत्ते हैं और सांसें उसका फल हैं। इसलिए अगर सांसें अल्लाह और रसूल की इताअत में गुजर रही हैं तो इस दरख्त का फल अच्छा है, और अगर सांसें अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में गुजर रही हैं तो इसका फल कड़वा है। और ये दरख्त एक मुकर्रर दिन पर कटेगा, जिस दिन सबको पता चल जाएगा कि इसका फल अच्छा था या कड़वा था, और वो हमारी मौत का वक्त होगा। किस खुशफहमी में जी रहे हैं, अभी बहुत वक्त है। सहाबा को तो फिक्रें लग जाती थी, 30, 35, 40 साल की उम्र में होते हुए गम लग जाता था कि अब तो ऊपर के दिन चल रहे हैं, बोनस पे जा रहे हैं, हमारी तो अभी प्लानिंग्स हो रही हैं, अभी तो हमारे अरमान पूरे होने तो क्या थे, अभी तो हमने सेटअप ही नहीं किया। किसी माँ की बात याद आ जाती है, जो बात सही नहीं थी लेकिन उससे सोच मुझे बड़ी अच्छी मिली। किसी ने उसको एहसास दिलाया कि बेटी बड़ी हो रही है, अब इसका जहेज जमा करो, इसके लिए करो, जैसे बड़े बूढ़े करते हैं। तो बड़ी अदा से ठलाक के वो माँ बोली, अभी तो मेरे अपने अरमान नहीं पूरे हुए, अभी तो मैं अपने घर में बड़े डेकोरेशन पीस रखने, बेटी का बाद में खरीदूंगी। हाँ, ख्वाहिशें, आरजुएं, तमन्ना, हमारी कब इस दुनिया से आरजुएं पूरी होती हैं? कैफ मद जिल्ला, हम में से हर एक लिखे जरा। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब मैं कभी फारिग हूँ, मौके मिले, मैंने एवरेज रखी हुई अल्लाह के नबी सल्लम की उम्र को, क्योंकि हदीस में आता है कि मेरी उम्र मेरी उम्मत की औसत उम्र है, 63 साल, 63 का अदद लिखें, फिर नीचे आप अपनी असल उम्र लिखें जो है, अगर आपको पता है, अंदाज़ा तो होता है ना बंदे को, आप उसको माइनस करें। तो मैं इस तरह खेलती हूँ कि अच्छा, अगर बिलफर्ज मैं 63 साल जिंदा भी रही, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी को यकीन तो छोड़े उम्मीद भी नहीं, तो उसमें से अब मेरे इतने कम हो गए, अच्छा क्या मेरी आधी उम्र हो गई है जितनी होनी थी, अच्छा इससे बड़ी हो गई है, वो हो गया। इस तरह करते कराते ना, आप जब खेलते हैं तो यकीन करें कि बास दफ़ा हैरत होती है। मुझे अच्छी तरह याद आता है, किसी का बच्चा पैदा हुआ तो हमने कहा ये बच्चा बड़ा होगा, हमने तो उस वक्त बूढ़े हो चुके होना है, लेकिन आप देखिए वक्त कैसे जाता है, कुछ भी नहीं बदलता। किसी ने कहा कि मैं अपने बाप का शायद हिसाब लगा रहे थे किसी से, कि उनके बाप अपनी माँ यानी इनकी दादी के 42 ईयर्स के बाद फौत हुए और उनको वहीं जगह मिली, तो कहने लगी कि अच्छा माँ के और बच्चे के बीच में जुदाई 42 साल की थी, फिर बच्चा मिला, तो कहने लगी कि मैं जब मरूंगी तो पता नहीं मैं अपने अब्बू के कितनी देर बाद मरूंगी। सोचे आती है कि नहीं आती, क्या आप मौत से अपने आप को दूर कर सकते हैं? कभी हमने बढ़ते और लंबे होते सायों को देख के ये बात सोची? कैफ मद्द ज़िल्ला, अल्लाह ने हम सबको मोहलत दी हुई है, यकीन करें, एक एक लम्हा इस जिंदगी का कमा लें, ये जाया हो गया आपके हाथ कभी नहीं आएगा, जॉब चली गई वापिस आ जाएगी, घर टूट गया अल्लाह ना करे फिर बन जाएगा, अल्लाह बच्चे भी दे देगा आपको, लेकिन आपकी जिंदगी वापस नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इख्तनिम खमसन कबल खम्स, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से गनीमत जानो, अल हयात कबल अल ममातिका, जिंदगी को मौत से पहले, अल सेहत का कबल सकमिका, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, व फरागा कबल शगली का, अपनी फरागत अपनी फुर्सत को मसरूफियत से पहले, शबाब कबल हरमी का, और जवानी को बुढ़ापे से पहले, वगिनाओ का कबल फ़करू का, माल को मुफलसी से पहले। कल क्या पता है क्या हो, बुक कल पढ़ रही थी कि सहाबा कराम को अगर नेकी का कभी ख्याल आ जाता था ना तो फौरन चल पड़ते थे करने, कहते थे ऐसा ना हो कि अभी तो मैं ये कर सकता हूँ, अगले ही लम्हे मेरे लिए ये नेकी करनी मुश्किल हो जाए। इब्ने हम्माद बिन सलमा के बारे में किसी ने फरमाया, ये नाकाबिले यकीन बात है, यानी को मानेगा नहीं जो बात मैं कहने लगा हूँ, लेकिन सच है क्या, मगर मैं कभी हम्माद को हंसते हुए नहीं देखता, वो हमेशा हदीस सुनाने, नमाज पढ़ने, इल्म हासिल करने या अपने रब की हमदो सना में मसरूफ रहते थे, इस तरह वो अपना दिन गुजारते थे। अब अगला जुमला बड़े शऊर से सुनिएगा, कहते हैं कि वो अपना दिन इस तरह से गुजारते थे कि अगर आप इन्हें बता देते कि कल इनको मरना है तो वह इन सब में कोई इजाफा ना करते जो वो कर रहे थे, हर दिन ऐसे मनाते थे कि ये आखिरी दिन है जिंदगी का। अल्लाह अकबर। हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने इन लोगों को देखा है, वो अपने वक्त के बारे में दिरहमों दीनार से ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। हम तो इनको ही गिनते रहते हैं ना, कितने रह गए हैं, कितने आ गए हैं, क्या कमी क्या बेची, और इसी से हमारा सांस उखड़ा रहता है, लेकिन वो कहते हैं वो अपने वक्त के लिए फिक्र रहते थे कि हाय ये क्या होगा। याद रखिए कि जिंदगी की किताब का जो सफ़ा एक दफ़ा पलट गया वापस नहीं आएगा, जैसे आप टर्न नहीं ले सकते ना, हर दिन आप उस वक्त के करीब हैं। मोहब्बत से सुनिए, हर दिन आप अपने उस दिन के करीब आ रहे हैं जिस दिन आप अपने रब से मुलाकात करेंगे, जब रब के सामने पेश किए जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्लाह क्या करके आया हूँ, कहाँ जिंदगी गुजरी, क्या किया, फन फ्लेक्स और न जाने यही कुछ करके आगे। वलौ शाह जालना हुसाकिनन, हम साकिन करते लेकिन वक्त साकिन नहीं रहता, दिल बड़ा चाहता है कि जिंदगी जाए वहीं रुक जाए, बच्चे से पूछे वो कहेगा मेरा दिल करता है मैं हमेशा बच्चा रहूं। वैसे अक्सर बच्चे तो चाहते हैं मैं जल्दी से अब्बा बनूं, बड़ा बनूं, लेकिन जवानी जब आती है ना बिल्कुल जमी हुई, तो दिल चाहता है ये वक्त रुक जाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम ऐसे ही 12, 13, 14 के थे, तो मैं अपनी नानी को देखती थी तो मुझे उन पर रहम आता था। मैं कहती अब ये तो मरने के करीब है, हालांकि मेरी सोच के भी वो माशाल्लाह कितने साल बाद फौत हुई। तो मैं अपने आप को सोचती थी, आज भी मेरा बड़ा दिल चाहता है ये मैं 8-10 साल के बच्चों से पूछूं कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं अपने आप को कहती थी अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। वही सोचें जो होती हैं, अभी तो पता नहीं ये होना है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है। देखिए वक्त गुजर जाते हैं ना, आज जो जवानी है अगर ये कहाँ तक रहनी है। आज कोई भी बंदा अपने आप को देखे वलो शाल अजालहु साकिनन, यहाँ दुनिया में तो ऐसा नहीं होगा लेकिन एक जगह ऐसी है कि ये होगा, और वो है जन्नत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नतियों की उम्रें 30 से 32 साल के बीच में होंगी, क्योंकि ये बेहतरीन जवानी की उम्र है। ना आप छोटे होंगे ना बड़े होंगे। अब्बास के यहाँ 30 साल तो बहुत ओल्ड उम्र होती है, ये वो इसलिए कि वो लड़कों की माएँ आपको बड़ा समझने लग गई हैं, वरना असल में 30 साल की उम्र बेहतरीन उम्र होती है, जवानी की उम्र। सुम्मा जालना शम्स अलैहि दलीला, मुझे ऐसे यहाँ शम्स को पढ़ते हुए वो आयत याद आ गई, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ऊपर से हम सबको देख रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर एक दलील बना दी कि रब कितने प्यारे तरीके से कायनात का निज़ाम चला रहा है, तो तुम जान लो